भागवत सार की श्रृंखला में सातवां स्कंद ग्यारहवें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है पूर्ण समाज चातुर्वर्ण। इसके श्लोक को दोहराएंगे, कृपया दोहराएंगे। धर्म मूलम हि भगवान सर्ववेदमयो हरि, स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः, स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः, स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। समय विभाजन नहीं करना चाहिए, ये न च आत्मा प्रसीदति नहीं बोलना चाहिए, ये न च आत्मा प्रसीदति। जब पढ़ते हैं तब विभाजन करते हैं। और कोई माता जी? धर्ममूलम धार्मिक सिद्धांतों की जड़ ही निसंदेह भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सर्ववेदमय, समस्त वैदिक ज्ञान का सार हरि ही परम पुरुष, स्मृतम च जिससे तथा शास्त्र तद्विदाम परमेश्वर को जानने वाले का राजन, हे राजा, येन जिससे च भी आत्मा, आत्मा मन शरीर तथा हर वस्तु प्रसीदति, पूर्णतया प्रसन्न हो जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। परम पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के सार, समस्त धर्मों के मूल तथा महापुरुषों की स्मृति हैं। हे राजा युधिष्ठिर, इस धर्म के सिद्धांत को प्रमाण स्वरूप समझना चाहिए। इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर सबों की तुष्टि होती है, यहाँ तक कि मनुष्य के मन, आत्मा तथा शरीर की भी तुष्टि होती है। तात्पर्य, जैसा कि यमराज ने कहा है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मृत्यु के बाद प्रत्येक जीव की देखभाल करने वाले भगवान का प्रतिनिधि यमराज हैं, जो इसका निर्णय करते हैं कि जीव कब और कैसे अपना शरीर बदलेगा। वह अधिकारी हैं और उनका कहना है कि धर्म तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों तथा आचार संहिताओं से बना है, कोई धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। अतएव वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी कृत्रिम धार्मिक पद्धतियों को अस्वीकार कर देते हैं। भगवद्गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यः। वैदिक ज्ञान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समझना। अतएव हम चाहे वेदों की बात करें या शास्त्रों की, चाहे धर्म की बात करें या मनुष्य के वृत्ति परक कर्तव्य के सिद्धांतों की, इन सब का एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण को समझना होना चाहिए। अतएव श्रीमद् भागवत का यह निष्कर्ष है, सवै पुंसः परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यह आत्मा सुप्रसीदति। दूसरे शब्दों में धार्मिक नियमों का लक्ष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करना सीखना है। यह सेवा अहेतु की होनी चाहिए तथा भौतिक स्थितियों के रोके जाने पर रुकनी नहीं चाहिए तथा मानव समाज सभी प्रकार से सुखी हो सकेगा, तब मानव समाज सभी प्रकार से सुखी हो सकेगा। स्मृतियां वैदिक ज्ञान के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले शास्त्र हैं, जिन्हें वैदिक सिद्धांतों का प्रमाण माना जाता है। धर्म का पालन करने के लिए 20 प्रकार की भिन्न भिन्न स्मृतियां हैं, जिसमें से मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियां सर्वव्यापक हैं। याज्ञवल्क स्मृति में कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियतात्मनः सम्यक संकल्पः कामो धर्म मूलम इदं स्मृतम्। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रुतियों वेदों तथा स्मृतियों से मानवीय आचरण सीखे। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम विना ऐकांत की हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। आशय यह है कि भक्त बनने के लिए मनुष्य को श्रुति तथा स्मृति में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे पुराणों तथा पंचरात्रिक विधि के नियमों को मानना चाहिए। श्रुति तथा स्मृति का पालन किए बिना न तो कोई शुद्ध भक्त बन सकता है और न भक्ति से रहित श्रुति तथा स्मृति से कोई जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अतएव सभी प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांतों का प्रश्न ही नहीं उठता। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में ईश्वर केंद्र बिंदु रहते हैं। इस समय विश्व भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह भक्ति भावना से प्राय रहित है, अतएव श्रीमद् भागवत के निर्णय के अनुसार निंदनीय है। भक्ति के बिना तथाकथित धार्मिक सिद्धांत मात्र प्रवंचना है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाउं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते असाधु साधु तदायि अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर हरे कृष्ण सातवें स्कंद में हम लोग अब तक 10 अध्यायों पर चर्चा कर चुके हैं और आगे ये 15 अध्याय इस पूरे स्कंद में हैं और इसके दो भाग हैं। अब तक जो हमने चर्चा की 10वें अध्याय तक, इसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है और उनके उदाहरण स्वरूप प्रह्लाद महाराज की कथा है कि कैसे प्रह्लाद महाराज के उदाहरण से बताया गया कितना उनका तीव्र स्मरण था, कितनी उनको श्रद्धा थी, कैसे वो भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित थे। अब इनको बताने के बाद अगले अध्यायों में स्कंद के अंत तक वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने प्रह्लाद महाराज की कथा सुन ली, प्रह्लाद महाराज के विषय में प्रश्न किया था उन्होंने कि ऐसा कैसे हुआ कि उनके पिता इतने असुर हो गए कि अपने ही बच्चे को उन्होंने इतने कष्ट दिए, तो उसके लिए पूरी कथा सुना दी नारद मुनि ने। तो अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं। तो पहले 4 श्लोकों में इस अध्याय के युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न हैं। मूलतः युधिष्ठिर महाराज ने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि धर्म के सिद्धांत क्या है, धार्मिक सिद्धांतों को बताइए, और दूसरा उन्होंने पूछा वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कीजिए। अब प्रश्न ये आता है कि जब शुद्ध भक्ति को वो सुन चुके हैं, जान चुके हैं, उदाहरण से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर ये वर्णाश्रम और धार्मिक सिद्धांतों को पूछने का क्या आशय है, क्यों युधिष्ठिर महाराज इनको पूछ रहे हैं? भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का स्मरण करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सब हो गया, सब तो सुन लिया, और धार्मिक सिद्धांत क्या रहे? तो क्यों ये प्रश्न उन्होंने फिर से किया, और विशेषतः वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए, वर्णाश्रम धर्म क्या है इसको क्यों पूछा? क्या इससे ये प्रतीत होता है कि वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ है भक्ति से, वो भक्ति जो प्रह्लाद महाराज ने की, क्या उससे वर्णाश्रम श्रेष्ठ है कि युधिष्ठिर वो सुनने के बाद अब कह रहे हैं अब और आगे वर्णाश्रम का बताइए? नहीं, युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अभी अभी उन्होंने सुना है वो बहुत ऊंचे स्तर की भक्ति है, और उस भक्ति तक कैसे पहुंचना है इसको अब वो जानना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे भी परे कोई धर्म के सिद्धांत होंगे, इससे भी परे भक्ति होगी, वर्णाश्रम इससे परे है। नहीं, युधिष्ठिर महाराज साधारण लोगों के लिए सोच रहे हैं कि नारद मुनि ने अभी जो बताया वो ऊंचे स्तर की भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, पूर्ण रूप से भगवान में मग्न हो जाना, जैसे प्रह्लाद महाराज कभी जोर से हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी स्तब्ध हो जाते हैं, ये भक्ति है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि सब तो ये भक्ति नहीं कर सकते, साधारण लोग तो ये भक्ति नहीं कर सकते, इस स्तर पर नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते हैं तो उसका मार्ग क्या है, ये प्रश्न इसीलिए उन्होंने किया। तो बहुत महत्वपूर्ण किया, आपने भक्ति तो बता दी, शुद्ध भक्ति पहुंचना कैसे है नारद मुनि आप बताइए। तो इसीलिए नारद मुनि से वो ये प्रश्न करते हैं कि धर्म के सिद्धांत क्या हैं और वर्णाश्रम धर्म क्या है। और वो नारद मुनि से पूछते हैं, नारद मुनि ने मानो पूछा हो कि मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो, इतने सारे अन्य ऋषि मुनि हैं उनसे पूछ लो। तो नारद मुनि को कहते कि आप सीधे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आपसे अच्छा धर्म के सिद्धांत कोई नहीं सिखा सकता। तो ये दो बातें कहीं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आपसे अच्छा धर्म के सिद्धांत कोई नहीं सिखा सकता। प्रभुपाद समझाते हैं क्यों कहा युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि वो परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। आप ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने सुना, नारद मुनि ने व्यासदेव को सुनाया, व्यासदेव ने आगे इनको कहा और उन्हीं परंपरा में हमें ज्ञान मिल रहा है। अर्थात युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप परंपरा में हैं, अर्थात बहुत से ज्ञान हमें उपलब्ध हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब हम कई स्थानों में जाते हैं तो वहां के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का ग्रंथ, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान वहां पर प्रचलित होता है, तो वो भी ज्ञान दे रहे हैं, वो भी भक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन वैष्णव आचार्य उनकी निंदा नहीं करते लेकिन उनको स्वीकारते नहीं। क्यों नहीं स्वीकारते? क्योंकि ज्ञान परंपरा में आना चाहिए। हां, अगर वो उस स्थान का प्रसिद्ध व्यक्ति परंपरा में है तब उस ज्ञान को स्वीकारा जाता है। जैसे वृंदावन, वृंदावन में रूप गोस्वामी इत्यादि बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए अपने समय के, और उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको स्वीकारा जाता है, क्योंकि रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि केवल प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, वे परंपरा में आने वाले आचार्य हैं, इसीलिए उस ज्ञान को स्वीकारा जाता है। लेकिन वहीं वृंदावन में कई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जो परंपरा में नहीं आते हैं। हो सकता है उनकी भक्ति श्रेष्ठ है, हो सकता है कि वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन क्योंकि परंपरा में नहीं आते उनके ज्ञान को स्वीकारा नहीं जाता, उनकी शिक्षाओं को स्वीकारा नहीं जाता। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम जब ऐसे कुछ लोगों की शिक्षाओं को देखें तो हमें निंदा नहीं करनी है, हमें उनको नीचा नहीं दिखाना है, हमें ये नहीं कहना है कि ये बेकार है। नहीं, हो सकता है वो भक्त हों, लोग कई नाम लेते हैं जिनकी शिक्षाओं को हम ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है वो भक्त हों, शुद्ध भक्त भी हों, हम उसको स्वीकार सकते हैं, लेकिन निर्देशों को नहीं। तो ये कैसी बात है, ये विरोधाभास है। हम किसी को शुद्ध भक्त स्वीकारें और उसके निर्देशों को नहीं स्वीकारें, ये तो बड़ा विरोध है। तो फिर आप उसको शुद्ध भक्त क्यों स्वीकारते हैं? हम तो भगवान अगर अवतार ले लें और वो भी परंपरा में ज्ञान नहीं दे, शास्त्रों को नकार दे, हम उनको भी नहीं स्वीकारते। भगवान बुद्ध आए और उन्होंने ज्ञान दिया कि शास्त्रों को स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है, वेदों को नकार दो। वैष्णव आचार्य उस ज्ञान को नहीं स्वीकारते, भगवान को स्वीकारते हैं। इसी तरह जैसे भगवान के अवतार को स्वीकारा जाता है लेकिन उनकी शिक्षाओं को नहीं, क्योंकि वो वेदों को नकारते हैं। शुद्ध भक्तों को स्वीकारा जा सकता है, हो सकता है उनकी भक्ति बड़ी श्रेष्ठ हो, हमारे अंदर क्षमता नहीं है उनको भक्त या अभक्त कहने की या समझने की, लेकिन क्योंकि वो परंपरा में नहीं है उनकी शिक्षाओं को नहीं स्वीकारा जाता। ये बात हमें समझनी है। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी के सीधे पुत्र हैं, सीधे उनसे जन्मे हैं और आप भक्ति के सिद्धांतों को बड़ी अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि आपने खुद भक्ति की है। तो प्रभुपाद क्यों इस पर जोर देते हैं? हम लोग कई जगह देखते हैं, जहां भी अवसर आता है प्रभुपाद परंपरा, ज्ञान परंपरा से लेना है ताकि हमारी भक्ति में मिश्रण ना हो, हम भक्ति को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनाएं, हम भक्ति उस तरह से ना करें जैसे हमें अच्छी लगती है, हम भक्ति उस तरह से करें जैसे आचार्यों ने बताया है। अगर परंपरा नहीं है तो हम भक्ति उस तरह से करेंगे जैसे हमें अच्छा लगता है, हम भक्ति उस तरह से करेंगे जो आचार्यों के द्वारा शास्त्र के द्वारा निहित नहीं है। हमारी भक्ति में मिश्रण आ जाएगा और क्योंकि भक्ति में मिश्रण आएगा हम भक्ति की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए हरेक भक्त को। प्रभुपाद चाहते हैं कि हम भक्ति की पूर्णता प्राप्त करें, भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करें, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, लेकिन नियम से जाकर, परंपरा से जाकर, परंपरा की सेवा के द्वारा, परंपरा के द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा और उस भक्ति के द्वारा। इसलिए नियम आवश्यक हैं। इस तात्पर्य में हम लोग पढ़ रहे थे, प्रभुपाद कह रहे हैं कि नियम आवश्यक हैं। उस चीज को हम पुनः पढ़ना चाहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद लिखते हैं, श्रुति तथा स्मृति का पालन किए बिना न तो कोई शुद्ध भक्त बन सकता है और न भक्ति से रहित श्रुति तथा स्मृति से कोई जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। दोनों चीजें कहीं प्रभुपाद ने, एक नहीं। एक तरफ हम भक्ति करना चाहें लेकिन श्रुति और स्मृति का पालन नहीं करें, वेदों को शास्त्रों को पालन नहीं करें, प्रभुपाद के कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। स्पष्ट लिखा प्रभुपाद, हम वेदों को नकार दें, श्रुति स्मृति को नकार दें, नियमों को नकार दें, कोई नियम नहीं। कोई कह सकता है भगवान से प्रेम करना है, क्या आवश्यकता है नियम की? अरे प्रेम करने के लिए कौन से नियम चाहिए? कोई कह सकता है क्या कि आप अगर मुझसे, मान लीजिए एक युवक युवती है, वो कहें कि आप मुझसे प्रेम करते हो तो आपको सुबह 4:30 बजे उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, खड़े होकर मंगल आरती करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, इतने नियम पालन करने पड़ेंगे, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये कैसा प्रेम है? ये तो प्रेम नहीं है, ये तो हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। कोई कह सकता है? इसी तरह कोई कह सकता है कि कृष्ण से प्रेम करना, इतने नियमों की क्या आवश्यकता है? सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नियम पालन करो, जप करो, क्या जरूरत है? अरे प्रेम करना है ऐसे ही करेंगे। नहीं कर सकते ऐसे प्रेम। क्यों नहीं कर सकते? अरे किसी को प्रेम करने के लिए क्या नियम की आवश्यकता है? इस जगत में हम लोग देखते हैं कभी किसी को प्रेम हो जाता है किसी से, तो क्या वो नियम पालन करके प्रेम करता है? तो ऐसे ही प्रेम हो जाता है। लोग कहते हैं ना, पहली बार देखा और प्रेम हो गया, मूर्खता है, धोखा है, वो प्रेम नहीं है, ऐसा प्रेम होता ही नहीं है। क्यों? प्रेम क्या होता है? प्रेम तब होता है जब हम उस व्यक्ति को जाने, उस व्यक्ति के बारे में जाने, उसकी महानता को जाने, उसकी श्रेष्ठता को जाने, उसके चरित्र, उसके गुणों को जाने, और ये सब जानकर जब हम उससे प्रेम करें, वो प्रेम है। श्री कृष्ण को जानने के लिए, उनके गुणों को जानने के लिए, उनकी महानता को जानने के लिए शास्त्र चाहिए। इसीलिए शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है। प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि बिना श्रुति स्मृति, बिना शास्त्र पढ़े कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। स्पष्ट है। क्यों नहीं बन सकता? ये कारण है, क्योंकि जानते ही नहीं है भगवान की महानता, क्या प्रेम करेंगे उनसे। और शुद्ध भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम करना। और दूसरी ओर प्रभुपाद कहते हैं कि ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि केवल श्रुति स्मृति, बस वेद पढ़कर हम भगवान के भक्त प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूर्ण नहीं। भक्ति विहीन है अगर वो, तो उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो एक तरफ भक्ति बिना शास्त्रों के पालन किए बिना करना या भगवान से प्रेम करना, वो सही नहीं, कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। दूसरी ओर केवल शास्त्र पढ़ना लेकिन भगवान को भूल जाना, कृष्ण को भूल जाना, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, वो भी पूर्ण नहीं है। इसीलिए दोनों चाहिए। हम भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम उत्पन्न करें, लेकिन श्रुति स्मृति पुराण आदि सबके नियमों का पालन करते हुए तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सिद्धांत है बताइए और आप ही क्यों बताइए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें ज्ञान परंपरा में लेना चाहिए। बहुत जल्दी हम लोग इधर उधर चले जाते हैं, परंपरा को छोड़ना हमारे लिए बड़ा सरल है, क्योंकि हमारा मन बड़ा दूषित है। मन जटिल है इसीलिए परंपरा को छोड़ना सरल हो जाता है। अगर मन जटिल नहीं होता, जिसका मन शुद्ध है उसके लिए परंपरा को छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे आचार्यों भक्तों का, उनके लिए परंपरा छोड़ना असंभव है क्योंकि हृदय शुद्ध है। इसीलिए परंपरा बहुत आवश्यक है, परंपरा से ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। तो हमारे लिए बड़ा सरल है, हम कुछ इधर उधर की बातें सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, यहां पर करेंगे तो ऐसे भक्ति हो जाती है, वहां जाएंगे तो इतनी जल्दी प्राप्त हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं वृंदावन जैसे स्थानों में, जो भगवान का धाम है, भगवान का स्थान है, वहां भी बड़े बड़े असुर हैं और वे लोग ऐसी चीजों को प्रचार करते हैं। अरे तुम क्या भक्ति कर रहे हो, ये क्या सोला माला जाप, ये क्या बैठकर नियम का पालन, हमारे पास आओ, 10 दिन में शुद्ध भक्त बना देंगे तुम्हें। धोखा है, मूर्खता है, मोह है। इसीलिए हमें परंपरा चाहिए, जो आचार्यों ने कहा। हमें कोई चिंता नहीं है, हमें शुद्ध भक्त बनना है, चाहे 1 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, कोई चिंता नहीं है, आचार्यों के पथ को नहीं छोड़ेंगे। इसे कहते हैं पतिव्रता का भाव। हर भक्त को परंपरा के प्रति ये भाव होना चाहिए, जैसे एक सती या जैसे एक पतिव्रता पत्नी का भाव होता है। वो कभी अपने पति को छोड़कर कभी दूसरे पुरुष का स्मरण भी नहीं करती, ये पतिव्रता स्त्री है। जैसे सीता देवी ने कहा, जिस समय उनको अपनी लीला समाप्त करनी थी, पृथ्वी में प्रवेश करना था, सीता देवी ने यही बात की, यथा हम राघवाद अन्यम मनसापी न चिंतये तथा मैं माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। अगर मैंने मन में भी कभी राघव भगवान श्री रामचंद्र के अलावा किसी और पुरुष का स्मरण नहीं किया तो हे पृथ्वी देवी मुझे स्थान दीजिए, और पृथ्वी ने स्थान दिया। ये भाव चाहिए हमें परंपरा के प्रति, कि हम परंपरा से इस तरह जुड़े रहे, यथा हम राघवाद अन्यम, कभी किसी अन्य चीज का ध्यान नहीं। और अगर परंपरा से हमारा ये भाव है तो जैसे एक पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति की सेवा करके भगवान के धाम को प्राप्त करती है, इसी तरह एक भक्त केवल परंपरा से पतिव्रता का भाव, इस भाव को प्रकट करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए परंपरा चाहिए। तो ये परंपरा का महत्व है। परंपरा से शुद्ध ज्ञान आता है, कोई मिश्रण नहीं। कोई कह सकते हैं कि हो सकता है कि देने वाले ने मिश्रण कर दिया हो, हमें जो आचार्यों से मिल रहा है उनमें से एक आचार्य किसी ने अपना मिश्रण कर दिया हो, कोई बात नहीं, परंपरा है, पता चल जाएगा अगर मिश्रण है तो। क्या यही बात जो प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कही, क्या वही बात भक्ति विनोद ठाकुर ने कही, क्या वही बात अन्य आचार्यों ने बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कही? अगर नहीं तो पता चल जाएगा कहां दूषण। इसीलिए शुद्धता आती है परंपरा से। तो ये परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य श्री कृष्ण को प्राप्त करना है और उसके लिए तपस्या चाहिए। और क्या एक तपस्या है? परंपरा से जुड़े रहना ये एक तपस्या है। हमें आकर्षित करेंगे अन्य चीजें, कोई अच्छा भजन, कोई अच्छा ज्ञान, कोई कह देगा अरे आपको तुरंत ये क्या, आप 16 माला करने में 2 घंटा लगाते हो, हमारे पास आइए 4 घंटे में 64 माला करवा देंगे। बड़ा आकर्षण, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? परंपरा पालन कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं अगर 16 माला करते हुए 10 जन्म लग जाए भगवान को प्राप्त करने में, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा ज्यादा समय है? शाश्वतता की दृष्टि से देखे जाएं, हमने करोड़ों जन्म यहां बिता दिए इस भौतिक जगत में, अगर 8-10 जन्म वापस जाने में बिता दे तो कौन सा नुकसान है, कौन सा बड़ा समय है? इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी शॉर्टकट की। हाँ, जो आचार्यों ने दिया वही शॉर्टकट है हमारे लिए, ये समझना चाहिए। भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कि कैसे मैं जल्दी से कैसे भक्त बन जाऊं, जल्दी से कैसे कृष्ण को प्राप्त कर लूं। भक्ति का एक ही शॉर्टकट है। वैसे तो भक्ति करना, कृष्ण को प्राप्त करना बहुत लंबा कार्य है, करोड़ों करोड़ों जन्म, बहुनाम जन्म नाम अंते कृष्ण स्वयं कहते हैं शास्त्र भगवत गीता में। कृष्ण स्वयं कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, करोड़ों जन्म लग जाएंगे आपको कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। एक ही शॉर्टकट है और वो क्या है? परंपरा। बस परंपरा का पालन करेंगे बहुत जल्दी कृष्ण को प्राप्त करें। ये एक ही हमारे लिए शॉर्टकट है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए परंपरा से सतीत्व का भाव, पतिव्रता पत्नी का भाव हमारा होना चाहिए। हमें कभी परंपरा को नहीं त्यागना चाहिए। और उस परंपरा में रहकर जब हम ज्ञान स्वीकार करते हैं तो न केवल शुद्धता आती है, परंपरा के आचार्यों की कृपा हम तक उस पहुंचती है। ये जो ज्ञान आचार्य ला रहे हैं ये मत जानिए कि केवल ज्ञान लेकर आ रहे हैं, नहीं, ये सारे आचार्य एक के बाद एक, एक के बाद एक उन सारे परंपरा के आचार्यों की कृपा को आप तक ला रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि ज्ञान दे रहे हैं वही चीज जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कही, वही चीज जो पहले रूप गोस्वामी ने कही, वही बलदेव विद्याभूषण ने कही, वही चीजों को तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्रील प्रभुपाद हमारे पास ला रहे हैं। हाँ ये सही है, वह उन्हीं चीजों को ला रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन सबकी कृपा को ला रहे हैं। अर्थात अगर हम श्रील प्रभुपाद से जुड़े हैं तो हमें कृपा किन सबकी मिल रही है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, जितने पीछे आचार्य हुए उन सब की कृपा को लेकर आते हैं। इसीलिए परंपरा महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ कृपा है उन सारे आचार्यों की, वो सारे शुद्ध भक्तों की। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास ही नहीं, हमारा यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो जाए परंपरा को नहीं त्यागूंगा। क्योंकि यह पूर्ण विश्वास है कि अगर परंपरा की सेवा करते रहे, और परंपरा की सेवा कैसे होती है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, ऐसे ही एक भक्त को परंपरा की सेवा करनी चाहिए। और कैसे होती है परंपरा की सेवा? उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर कड़ाई से चलने से। जब हम आचार्यों की वाणी को अपने जीवन में उतारते हैं, जब हम आचार्यों के द्वारा दिए गए मार्ग पर चलते हैं, तभी हम उनकी सेवा कर पाते हैं। तो ऐसे नारद मुनि से प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने। देखिए बड़े शुद्ध भक्तों के प्रश्नों का भी क्या महत्व है। दिखने में दो साधारण प्रश्न उन्होंने कर दिए कि बस मुझे बताइए ये क्या है और वर्णाश्रम धन क्या है और आप ही बताइए। सुनने में तो बड़ा साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ उनका भाव, उनके ज्ञान, उसको देखना चाहिए। उसको प्रभुपाद प्रकट करते हैं अपने तात्पर्यों में कि ये उनका भाव कि क्यों वो ये प्रश्न कर रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने प्रश्न किए और फिर आगे पांचवें श्लोक से बारहवें श्लोक तक नारद मुनि ने धर्म के सिद्धांतों को कहा, उनके पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि धर्म के क्या सिद्धांत हैं। तो पांच छह और सात श्लोक में, ये जो सातवां श्लोक हमने पढ़ा इसमें तो भूमिका दी उन्होंने। तो नारद मुनि ने कहा कि नर और नारायण ऋषि ये प्रकट हुए और इनके पिता का नाम था धर्म, माता की नाम था मूर्ति। धर्म की मूर्ति, धर्म और मूर्ति, देखिए नाम भी नर नारायण ऋषि ने अपने माता पिता के कितने अच्छे चुने। धर्म मूर्ति, मूर्ति माता का नाम है, धर्म पिता का नाम है, और धर्म मूर्ति कौन है? नर नारायण ऋषि। तो नारद मुनि कहते हैं नर नारायण प्रकट हुए, दक्ष की पुत्री थी मूर्ति, उनके गर्भ से वो प्रकट हुए, उनके पिता का नाम था धर्म, और बहुत उन्होंने तपस्या की और धर्म के सिद्धांतों को दिया। क्योंकि धर्म के सिद्धांत पूछा तो सबसे पहले वो नारायण को स्मरण करके कह रहे हैं कि धर्म के सिद्धांत मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, ये भगवान ने दिए, उन्हीं सिद्धांतों को दे रहा हूं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत धर्म का वो इस श्लोक में देते हैं। क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत है धर्म का, भगवान सारे धर्म के मूल हैं। इसीलिए श्लोक में कहते हैं धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेद मयो हरि। जितने वेद हैं, जितने ज्ञान हैं, आप जो भी ले लीजिए, जितने सिद्धांत है, जितने धर्म हैं, मूल भगवान श्री कृष्ण। तो ये मूल सिद्धांत देखिए नारद मुनि का भाव। अब वो आगे अगले श्लोकों में 8 से लेकर 12वें श्लोक तक 30 सिद्धांत देने वाले हैं भक्ति के, या मनुष्य को जो पालन करने चाहिए जिससे वो भक्ति कर सके। लेकिन उन सब को देने से पहले मूल सिद्धांत देते हैं कि वो सब ठीक है, लेकिन ये जान लो धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेद मयो हरि, कि भगवान सबके मूल हैं। और अब इसको समझने के बाद अब आगे चलते हैं। तो मूल सिद्धांत उन्होंने बता दिए कि उनको ही हमारा स्मरण हमें इत्यादि करना चाहिए। और फिर 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक युधिष्ठिर के पहले प्रश्न की धर्म के सिद्धांत क्या है, अर्थात ऐसे कुछ नियम जिनको पालन करके हम भगवान तक पहुंच सकें, उस स्तर तक पहुंच सकें जहां प्रहलाद महाराज पहुंचे। तो फिर उसको कहते हैं 30 चीजें बताते हैं, और 30 चीजें बताकर वो कहते हैं कि हर मनुष्य को ये पालन करनी चाहिए। ये आखिरी हम पहले उसको पढ़ते हैं, फिर 3 चीज पढ़ेंगे। हे राजा युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और प्रभुपाद इन 30 गुणों के लिए अगले तात्पर्य में एक महत्वपूर्ण बात हम सबके लिए कहते हैं। नारद मुनि ने कहा मनुष्य को 30 गुण होने या लेने चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को उपयुक्त 30 गुणों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह मनुष्य भी नहीं है। बताइए, नारद मुनि ने तो कहा कि मनुष्य को ये गुण होने चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं होने नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो है ही नहीं, मनुष्य ही नहीं है, पशु है। और अब वो 30 गुणों को पढ़ते हैं, क्योंकि हमने क्यों बताया, आप लोग थोड़ा सावधानी से सुने कि प्रभुपाद ने कहा है कि जिसके अंदर ये 30 गुण नहीं है वो तो मनुष्य ही नहीं है। और नारद मुनि ने भी कहा कि इन 30 गुणों को होना चाहिए। अब सारे गुणों की सूची लंबी है, हो सकता तो हर एक गुण को समझाते, कितना आनंद आता हो, 30 गुण प्रभुपाद कह रहे हैं उसके बिना तो मनुष्य ही नहीं है। तो अब सोचिए हम लोग क्या स्थिति है। अब ये सुनते समय आप सोचिए आपके अंदर ये गुण है या नहीं। नहीं है तो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में लिखा उसको याद कीजिए। क्या लिखा प्रभुपाद ने, अगर ये गुण है नहीं, प्रशिक्षण नहीं दिया इसके बिना, तो वो मनुष्य है ही नहीं। तो इसीलिए अब इन 30 गुणों को पढ़ेंगे और आप लोग सुनते जाइए और सोचते जाइए कि मेरे अंदर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर अपने आप को मनुष्य कहना। सभी मनुष्य को जिन सामान्य नियम का पालन करना होता ये है। तो नारद मुनि अब उन 30 गुणों को बता रहे हैं। सबसे पहला सत्य, पहला है सत्य। आप सब तो सत्यवादी हैं, सही है ना, कभी जीवन में झूठ बोला ही नहीं है, दूर रहते हैं झूठ से। इन गुणों को समझाएं तो कई दिन लग जाएंगे इस अध्याय को समाप्त करने में, इसीलिए केवल पढ़ रहे हैं। सत्य, फिर दया, दया होनी चाहिए हृदय में। आप सबके हृदय में बहुत दया है, आप हर एक के ऊपर दया करते हो, हर जीव के ऊपर दया करते हो, एक चींटी को भी कभी नहीं मारते हो आप। तीसरा तपस्या, आपकी तपस्या का कहना ही क्या, हमारे जैसे व्यक्ति को 1 घंटा रोज सुनते हो उससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि महीने में कुछ दिन उपवास करना, तो ये कुछ दिन मतलब जो भक्ति के लिए, जैसे एकादशी, आविर्भाव, तिरुभाव, तो हम लोग तो करते हैं। कभी को आप में से कोई नहीं कहता कि प्रभु जी मुझसे नहीं होता है उपवास, क्या शाम तक भूखे रहो, कहां कहां है भगवान ने भक्ति करने के लिए उपवास। तो आप सब ऐसा नहीं कहते, इसलिए आप सब तपस्या करते हो। तो सत्य, दया, तपस्या, दिन में 2 बार स्नान करना जो नहीं करता वो मनुष्य ही नहीं है, प्रभुपाद ने लिखा है आगे, राइट। दिन में दो बार स्नान करना, ये तो अगर किसी को आज हम लोग सुनते तो हमें बड़ा नॉर्मल लगता है, कौन सी बड़ी बात है। दो बार यहां तो हम लोग चार बार, पुजारी तो पता नहीं कितनी बार स्नान करते हैं, हर बार जाना है उनको स्नान करना है, तो कौन सी बड़ी बात है दिन में दो बार स्नान करना। लेकिन आप जाकर बाहर पूछिए, हमें ध्यान आ रहा है, हमारे हम जो बेलगाम मंदिर में थे तो एक स्टूडेंट एक ब्रह्मचारी बनने आया, तो घर पे बताए बिना आया था, तो किसी तरह उसकी माता को पता चल गया, उसकी मदर थी घर में, तो वो आई तो हमसे बात कर रही थी, तो फिर वो हो गया कि ठीक है वो नहीं बनेगा, वापस जाएगा, तो थोड़ी देर मंदिर में रही थी, तो एक दिन हमसे बात कर रही थी, तो हमसे कहने लगी कि अरे देखिए ये हमारा जो लड़का है इसका तो दिमाग खराब हो रहा है। हमने कहा क्यों, क्या हो गया, दिमाग खराब हो रहा है, हर समय ये कुछ पढ़ता रहता है, ये बता, अच्छी बात है भगवद गीता पढ़ता, नहीं और भी उसके आचरण देखने से लग रहा है, पता नहीं इसको कुछ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। हमने कहा क्या आचरण बताइए, तो उन्होंने कहा कि ये शौच में जाता है और हर बार जब जाता है तो नहाता है, मतलब टॉयलेट जाता है और हर बार उसके बाद नहाता है। तो हम सोच रहे थे इसमें आश्चर्य, मतलब अजीब व्यवहार क्या है, तो हमने उनको पूछा कि हमें समझ नहीं आया कि जो उन्होंने बोला वही बोला या कुछ और बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई बोले कि टॉयलेट जाकर नहाता है तो उसमें मतलब अजीब क्या है, तो अच्छी बात है। तो वो कहने लगी कि नहीं देखो ऐसे करता है, तो हमने कहा, हमने उनको पूछा, फिर दोबारा पूछा आप क्या कह रही हैं, हमें समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा वो टॉयलेट जाता है और फिर जब भी जाता है तो नहाता है। तो हमने कहा तो इसमें क्या गलत है, वो तो बड़ा अच्छी बात है, हम लोग भी ये करते हैं। बोले नहीं जरूरत नहीं है ना। हमने आगे चर्चा नहीं की उनसे, क्योंकि इस विषय पर क्या चर्चा करें, जो सोचते हैं कि जाकर आने में शुचि स्नान वनान करना बहुत, एक बार कर लिया बहुत हो गई, बड़ी बात है, शरीर का वजन कम हो गया, तो ये चीज है। इसीलिए यहां लिखा है नारद मुनि को कहना पड़ा कि दिन में दो बार स्नान करना चाहिए, क्योंकि वह जानते हैं कि क्या स्थिति है आजकल। सहनशीलता कितने हो गए, सहनशीलता मतलब सहन करना, जो भी कुछ हो, किसी ने आकर कुछ बुरा कह दिया सहन करना, मंदिर में सेवा कर रहे हैं किसी ने कहे बेकार सेवा करते हो अगले दिन से मंदिर नहीं आना, सहन करना ठीक है भगवान की इच्छा। अच्छे बुरे का विवेक जानना चाहिए, बुद्धि से क्या सही है क्या गलत है, रविवार को घर में सोना अच्छा है या मंदिर में दोपहर को भली धूप हो लेकिन आकर कथा सुनना अच्छा है, ये विवेक होना चाहिए। सुबह मंगल आरती में मंदिर के पास रहते हुए भी नहीं आना अच्छा है, यह विवेक, अच्छे बुरे का विवेक। मन का संयम, मन को वश में रखना, ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों का मन तो कहीं जाता ही नहीं है कृष्ण के अलावा। इंद्रिय संयम, इंद्रियों को वश में रखना। अब देख लीजिए इसके बिना प्रभुपाद ने क्या कहा, है ही नहीं। इंद्रिय संयम, अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना। ब्रह्मचर्य, हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना चाहिए, आवश्यक है। कैसे हो सकता है, प्रभुपाद ने कहा कि हर पुरुष को ब्रह्मचारी होना चाहिए और हर स्त्री को विवाहिता, अगर हर पुरुष ब्रह्मचारी हो जाएगा तो विवाह किससे करेंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पारिवारिक जीवन में रहते हुए, प्रभुपाद इसी अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई पारिवारिक जीवन में रहते हुए केवल संतान उत्पत्ति के लिए एक दूसरे के संग में आते हैं तो फिर वो व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है, वो ब्रह्मचारी है। लेकिन जो केवल आनंद लेने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते, ये गर्भाधान संस्कार की जब बात होगी तो प्रभुपाद समझाते हैं कि संस्कार करके गर्भाधान करके फिर केवल संतान उत्पत्ति के लिए अगर करते हैं वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, दान देना, बहुत सारे हैं इसीलिए समझाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं केवल। शास्त्रों का अध्ययन करना, सादा जीवन जीना, संतुष्ट रहना, साधु पुरुषों की सेवा करना, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना, जो भक्ति के लिए ठीक नहीं है उनसे छोड़ देना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता को समझना, गंभीर तथा शांत बने रहना, व्यर्थ की बातों से व्यर्थ की बातें करने से बचना, मनुष्य शरीर या इस आत्मा के विषय में विचार करना, सभी जीवों में अन्न का समान वितरण करना। ये नियम था पहले, लोग घरों में खुद भोजन खाने से पहले गाय के लिए अन्य लोगों के लिए निकाल कर रखते थे या उनको देते थे तब खाते थे, नहीं तो खाना नहीं मिलता था। हम लोग जब छोटे थे बंबई शहर में रहते थे, हमारी माता जी हमें कहती थी, हमारी माँ की, ये लोग जाके पहले गाय को खिलाओ, भूख लग रही है, बोले पहले जाके गाय को खिलाओ। और वो बंबई शहर में गाय ढूंढना आज तो मिलेगी नहीं, उस समय भी कठिन था। ऐसा नहीं था कि सड़क, जैसे यहाँ पर तो आप बाहर निकल जाओ सड़कों पर गाय मिल जाती, भाग्यवान है हम लोग, वहां ऐसा नहीं है, आज भी नहीं है, उस समय भी नहीं था। तो हमको गाय को ढूंढने कहीं जाना पड़ता था खिलाकर, तो बड़ा गुस्सा आता था, अरे भूख लग रही है पहले वो दे दिया कि जाओ पहले रोटी गाय को खिला के आओ। तो ये नियम है शास्त्र का। तो सभी जीवों में अन्न का समान वितरण करना, प्रत्येक आत्मा को विशेषतया मनुष्य को परमेश्वर का अंश मानना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना। भगवान साधु पुरुषों के आश्रय हैं, इसलिए साधुओं से सुनना। इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना, इनका नित्य स्मरण करना, सेवा करने का प्रयास करना, पूजा करना, नमस्कार करना, दास बनना, मित्र बनना और आत्मसमर्पण करना। हे राजा युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। तो आप सबने तो समर्पण कर ही दिया है, इसलिए इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। तो इन गुणों को कहने के बाद अब आगे 13वें श्लोक से लेकर इस स्कंद के अंत तक, अर्थात पूरे 15 अध्यायों के समाप्त होने तक वर्णाश्रम धर्म का वर्णन नारद मुनि करने वाले हैं कि वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, उनके नियम क्या हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसे कर्तव्य करने चाहिए इत्यादि। तो इसलिए 13वें श्लोक से दूसरे प्रश्न का उत्तर वो प्रारंभ करते हैं युधिष्ठिर महाराज के, कि किस तरह वर्ण और आश्रम क्यों हैं, क्यों बने हुए हैं और इसकी क्या आवश्यकता है। तो इसको वो वर्णाश्रम के पहले वो अलग अलग जो वर्ण हैं उनका वर्णन, आश्रमों का वर्णन अगले अध्याय में करेंगे। इसमें वर्णों का वर्णन करते हैं कि अलग अलग जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनके वो पहले वर्णन करते हैं कि इनके क्या कार्य हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो बताते हैं कि ब्राह्मण से पहले व्यक्ति द्विज बनता है। जैसे कहा गया है ना कि इस कलयुग में जब भी जन्म या पहले भी जन्म लेते तो जन्म ना जायते शूद्र, जन्म जब लेता है व्यक्ति तो शूद्र कहलाता है। संस्कारात भवे द्विज, संस्कारात भवे द्विज, संस्कार से वो द्विज बन जाता है। द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म हो चुका है उसको द्विज कहते हैं, अभी वो ब्राह्मण नहीं हुआ है, संस्कार हो गए, जैसे गर्भाधान संस्कार इत्यादि होने के बाद या अन्य थोड़े बहुत उसके संस्कार होते हैं जन्म के बाद, तो वो द्विज हो जाता है। द्विज यानी दूसरी बार जन्मा है, पहला जन्म माता पिता देते हैं, दूसरा जन्म आध्यात्मिक गुरु देते हैं। तो जिसका दूसरा जन्म हो गया उसको द्विज कहते हैं। तो द्विज के कार्य क्या है, द्विज के कार्य हैं कि उसको पूजा करनी चाहिए, उसको वेद का अध्ययन करना चाहिए नारद मुनि कहते हैं, और साथ ही साथ उसको दान देना चाहिए। तीन उसके कार्य बताए हैं जो द्विज है, जिसका दूसरा जन्म हो गया है, पूजा करे और अध्ययन करे वेदों का और दान करे। ये फिर जब वो अध्ययन कर लेता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है। वेद पढ़े, वेद पढ़ने के बाद, सब ज्ञान लेने के बाद ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, वो ब्राह्मण हो जाता है। तो ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण के क्या कार्य हैं, 6 कार्य ब्राह्मण के बताए गए भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। क्या कार्य है ब्राह्मण के, उसको यज्ञ करना चाहिए या पूजा करनी चाहिए, सिखलाना चाहिए कैसे करना है, पठन पाठन उसको वेद अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सिखलाना चाहिए, पाठन मतलब पढ़ाना चाहिए, और दान प्रतिग्रह, दान स्वीकार करना चाहिए और दान देना चाहिए। तो ये ब्राह्मण के 6 कार्य हैं। वो अध्ययन करे वेद का, वेद को सिखाए, पूजा इत्यादि करे या यज्ञ इत्यादि करे और उनको सिखलाए, और दान ग्रहण करे और दान दे। ये उसके 6 कार्य। क्षत्रिय के क्या कार्य हैं? नारद मुनि कहते यही 6 कार्य क्षत्रिय के हैं, केवल एक नहीं करना चाहिए उसमें से, 6 में से एक कार्य नहीं करे। कौन सा कार्य नहीं कर सकता क्षत्रिय? दान स्वीकार नहीं कर सकता। ब्राह्मण कर सकता है, क्षत्रिय दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसको दान देना चाहिए लेकिन दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह ये जो संस्कार होते हैं, ये ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और वैश्यों में होते हैं, शूद्रों के लिए वो नहीं कहे गए। तो उसको क्षत्रिय के लिए कहा गया, और साथ साथ क्षत्रिय अगर दान स्वीकार नहीं करेगा तो खाएगा कहां से, रहेगा कैसे? तो उसके लिए नारद मुनि कहते वो लोगों पर कुछ कर लगा सकता है, प्रजा पर, जो वाणिक समाज है उनसे कुछ वो कर ले सकता है, ये उसके लिए अनुमति है, उससे वो अपना जीवन चलाए, लेकिन भिक्षा नहीं ले सकता, दान नहीं ले सकता, क्षत्रिय को लेना नहीं चाहिए। और फिर वैश्य के कर्म क्या हैं? वैश्य के कर्म वो बताते हैं, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। कृषि करे, खेती करे, फिर उससे जो उत्पन्न हो उसको जाके बाजार में बेचे, वाणिज्य बेचे, कुछ खरीदे, और गोरक्षा, उसको गायों की रक्षा करनी चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि ये तो 3 काम वैश्य को करने चाहिए। और शूद्र के क्या कार्य हैं? शूद्र के कार्य हैं कि वो जितने भी ऊपर के उसके वर्ण हैं उन सब की सेवा करे, ये शूद्र का कार्य, हृदय से उनकी वो सेवा करे। तो ऐसे वो बताया गया है। फिर ब्राह्मण के लिए ये भी बताया गया है कि वो और भी कई उपायों से अपने जीवन को चला सकता है, और भी कई चीज कैसे चला सकता है वो, कभी कभी वैश्य के कार्य कर सकता है ब्राह्मण, गोरक्षा वाणिज्य कर सकता है कभी कभी। और इतना ही नहीं, और इसके अलावा कई चीजें बताई गई, जैसे ब्राह्मण एक अपनी जीविका चला सकता है उस चीज से जो उसको बिना मांगे मिले, बिना भिक्षा के जो चीज मिल जाए उससे अपना जीवन चलाए, दूसरा भिक्षाटन करे, भिक्षा मांगे, तीसरा खेत में आसपास कहीं पर जो जब लोग खेत साफ करते हैं, खेत कटिंग करते हैं, धान इत्यादि कट करते हैं, तो बहुत सारा धान गिर जाता है इधर उधर, उसको इकट्ठा कर ले, मांगे नहीं, भीख नहीं मांगे, उसको इकट्ठा कर। और चौथा प्रकार बताते हैं नारद मुनि की, जहां दुकानों में बिकता है अन्न वगैरह, वहां जाकर गिरा हुआ अन्न उठाकर खा ले, ये भी ब्राह्मण कर सकता है। तो ऐसे उन्होंने बताया कि ये कार्य लक्षण ब्राह्मण, कार्य ब्राह्मण कर सकता है। और फिर आगे वो ब्राह्मणों के लक्षण, क्षत्रियों के लक्षण क्या लक्षण हैं, वैश्य के क्या लक्षण हैं, इनको वर्णन करते हैं। तो उन लक्षणों को वर्णन, वैसे अगर हम शूद्रों के लक्षण देखें, बाकी तो हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों के बड़े ऊंचे लक्षण होते हैं, लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा शूद्र के भी लक्षण बताए गए हैं, और हमारे अंदर वो है कि नहीं, हमें वो देख लेने चाहिए, फिर हम लोग अपने आप को ब्राह्मण कहें। समाज के उच्च वर्णों को नमस्कार करना, ये शूद्र का कार्य बताए गए। सदैव स्वच्छ रहना, द्वैत भाव से मुक्त रहना, अपने स्वामी की सेवा करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, चोरी नहीं करना, सदा सत्य बोलना, तथा गायों एवं ब्राह्मणों को सदा संरक्षण प्रदान करना, ये शूद्र के लक्षण है। बताइए कलयुग में तो ये भी लक्षण नहीं दिखाई देते, हम लोग कहां हैं पता नहीं है। तो खैर इनका वर्णन उन्होंने कर दिया नारद मुनि ने कि किसके किसके हैं। उसके बाद वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेते हैं, उन्होंने वर्णाश्रम धर्म बता दिया, अलग अलग वर्ण बता दिए, उनके कार्य बता दिए, उनके लक्षण बता दिए। अब वो बताते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के क्या कर्तव्य है। 15 कर्तव्यों को उन्होंने बताया, एक पतिव्रता स्त्री के क्या कर्तव्य, अर्थात एक पतिव्रता स्त्री को कैसे रहना चाहिए, एक अच्छी पत्नी का अर्थ क्या होता है, इसको अब नारद मुनि बता रहे हैं। देखिए नारद मुनि ब्रह्मचारी हैं लेकिन शास्त्र इतना श्रेष्ठ है कि ब्रह्मचारी होते हुए भी वो पतिव्रता स्त्री के धर्म को कह सकते हैं, भीष्मदेव भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन भीष्मदेव ने भी स्त्री धर्म का वर्णन युधिष्ठिर महाराज से किया बाणों की शैया पर। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कैसे स्त्रियों को रहना चाहिए, कैसे वो अपने पतिव्रता व्रत को या सतीत्व को बनाए रख सकती हैं, या क्या उनसे आशा की जा सकती है। ये नारद मुनि अगले विभाग में बताएंगे कि स्त्रियों के कैसे पतिव्रता स्त्री के क्या कार्य हैं, लक्षण, और फिर उसके बाद मिले जुले वर्ण का वर्णन करेंगे कि जो ना शूद्र है ना ब्राह्मण है, कोई जैसे पत्नी ब्राह्मण हो गई, पति वैश्य है, तो इन सब का क्या होता है, इनकी जो संतान उत्पन्न होती है उसे कैसे क्या कहा जाता है, या इस विवाह को क्या कहते हैं। तो ये सारा वर्णन नारद मुनि करेंगे, आज समय नहीं है, कल हम लोग इसका वर्णन करेंगे। तो कल भागवतम के क्लास में इस अध्याय को हम आगे जारी रखेंगे, जिसमें स्त्रियों का वर्णन होगा कि क्या स्त्रियों से आशा की जाती है, शास्त्र क्या कहता है कि पतिव्रता स्त्री के लिए क्या कार्य हैं, और जो मिले जुले वर्ण हैं उनके क्या कार्य हैं, इनको हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न?